आत्माओं ने दिल से, सच्ची दिल से, दिल के प्यार से भक्ति की है, भक्ति पूरी अच्छी तरह से किया है, वही आत्माएं भक्ति के फल स्वरूप भगवान को पहचान सकती है। बाबा जो कहते हैं ज्ञान गुप्त है, इसका अर्थ ये है, गुप्त तो है नहीं हमारा ज्ञान, है गुप्त क्या? नहीं, लोग दुनिया में ऐसा करते हैं, कोई महाराज संत के पास जाएंगे तो बोलेंगे मंत्र देता हूँ, कान में मंत्र देता हूँ, किसी को बताना मत, वो समझते इसको गुप्त कहते हैं। नहीं, हमें तो बाबा क्या कहते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताओ, बड़ी आवाज से बताओ, माइक में बताओ, है ना, बड़े बड़े बोर्ड लगाओ और बताओ, सबको बताओ, तो भी गुप्त है। क्या कहते हैं, सबको बताओ तो भी ज्ञान गुप्त है, क्योंकि हम बताते सबको है पर किसी को समझ में आता नहीं है, उनके लिए गुप्त है। हम बताने वालों के लिए प्रत्यक्ष है पर सुनने वालों के लिए गुप्त है, क्योंकि अंदर में कुछ जाता ही नहीं है जब तक भाग्य खुलता नहीं है। कई लोग होते हैं कि ज्ञान में चलते, कोई बोलेगा मेरा पति ज्ञान में चले तो अच्छा, बाबा मेरी पत्नी ज्ञान में चले तो अच्छा है, रोज घर में मुरली पड़ी जाती है, बाबा के गीत रोज सुने जाते हैं, तो भी उनको टच नहीं होता। इसको कहते हैं वंडरफुल गुप्त ज्ञान है। बाबा का ज्ञान कैसा है, वंडरफुल है, गुप्त है, वंडरफुल है, कि खुला होते हुए भी कोई समझ नहीं सकता जब तक उनका अधिकार न बने। हम क्या कहते हैं कि भाई बोले तुम 10 साल से चलते हो पर तुम्हारा घर वाले लोग नहीं चलते हैं, वो जब तक वो आत्मा को पहचान न मिले व्यक्तिगत रूप से, इंडिविजुअली, तब तक वो ज्ञान में नहीं चल सकता। तो ऐसा गुप्त ज्ञान है। तो एक तो हमें मिला है ईश्वर, बाबा मिला है ना, स्वयं भगवान मिला है, ये बहुत बड़े प्राप्ति की और अनुभूति की बात है। दूसरा क्या मिला है, ईश्वरीय परिवार। बाबा कहते हैं पहली बार कल्प में एक बार ऐसा होता है कि तुम ईश्वर के साथ रहते हो और ईश्वरीय परिवार के साथ रहते हो। हमारा कौन सा है, ईश्वरीय परिवार। क्या विशेषता है ईश्वरीय परिवार की, ये रूहानी परिवार है। कैसा है, रूहानी। हम आपस में ब्रह्मा कुमार कुमारी कोई और चाचा मामा का संबंध नहीं है, है ना, मामा मासी का संबंध नहीं है, भाई बहन का संबंध भी नहीं है। भाई बहन का संबंध बाबा ने समझा गृहस्थ में रहते हुए जो युगल है उसके लिए, बाकी हम सभी तो कौन है, आत्मा आत्मा, भाई भाई। ये कितना सुंदर और वंडरफुल परिवार है, जिस परिवार में सभी ज्ञानी है। क्या है, जिस परिवार में सभी ज्ञानी है, अपने आप को आत्मा समझते हैं और एक आध्यात्मिक यात्रा पर चल रहे हैं, ऐसा ये परिवार है ना। इस परिवार का बनना, ईश्वरीय परिवार का बनना, ब्राह्मण बनना, ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना, इसका अर्थ ही ये है कि यात्रा शुरू होना। हम सभी कौन है, यात्री है। बाबा कहते तुम रूहानी यात्री हो, रूहों की यात्रा शुरू हुई है और सभी यात्री है। तो इसीलिए ये परिवार, ये संगम युग की विशेष प्राप्ति है। कई बार सभी भाई बहन कहते हैं, आपका भी अनुभव होगा, भाई बहन कहते हैं कि हम अभी बाबा के ज्ञान में आने के बाद लौकिक परिवार को मिलते हैं तो इतनी खुशी नहीं होती है, परंतु कब होती है खुशी, अलौकिक परिवार में, अलौकिक परिवार में बहुत ज्यादा खुशी होती है। क्यों ऐसा होता है पता है, इसका कारण है, अभी हमारा ये जो ईश्वरीय परिवार है ना, आपका जिन जिन के साथ संबंध है रूहानी,
आत्मीय संबंध है और इतना बड़ा हमारा ईश्वरीय परिवार अभी बना है। तो यही ईश्वरीय परिवार पूरे कल्प में हमारा परिवार बनने वाला है, समझा? यही ईश्वरीय परिवार, रूहानी परिवार, ज्ञानी और समझदार परिवार, अभी अभी जितना परिवार के साथ हमारा संबंध होगा अच्छा है ना, उतना सारे कल्प में वही परिवार बनेगा। माँ बाप बहन भाई, जिस समय जितना हमारा परिवार होगा वो किस में से होगा? यही दैवी परिवार से सिलेक्ट होने वाला है। तो समझ लीजिए कि हमारा रूहानी परिवार अर्थात कि सभी जन्मों के हमारे संबंधी है आपस में, समझा? रूहानी परिवार अर्थात क्या है? हमारे 84 जन्मों के संबंधी है। आप देख लीजिए, कोई हमारी माँ होगी, कोई हमारा बाप होगा, कोई भाई, कोई बहन, कोई क्या, पर नजदीक के संबंध में होंगे। हमें लौकिक परिवार से भी ये परिवार ज्यादा अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि लौकिक परिवार तो अंतिम जन्म का परिवार है ना, कलयुग के अंत का परिवार है। सभी थकी हुई आत्माएं इकट्ठी हुई है, थकी हुई हिसाब किताब चुकतु करने के लिए। लौकिक परिवार में क्या होता है, हमें सब थकी हुई कलयुग के अंत में आई हुई तमोप्रधान बनी हुई हिसाब किताब चुकतु करने के लिए मिली हुई ऐसी आत्माएं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अभी हमें क्या करना है, सर्व संबंध किसके साथ जोड़ना है? एक बाबा के साथ। कलयुग के जो भी बंधन संबंध है वो क्या है? बंधन है। कलयुग के सभी संबंध क्या बन जाते? बंधन बन जाते। अभी बाबा ने कहा कि तुम्हारा सर्व संबंध मेरे साथ होना चाहिए। अभी अभी बाबा के साथ जितना संबंध जोड़ेंगे उतना संबंध का सुख हमें सारे कल्प में मिलेगा। तो एक तो मिला है हमें बाबा, दूसरा मिला है रूहानी ईश्वरीय परिवार, तीसरी प्राप्ति जो हमें ये है कि ज्ञान का सागर आकर के अनगिनत ज्ञान के हीरे मोती लुटा रहा है ना। कभी का सागर स्वयं आकर के हमारी मन बुद्धि रूपी गागर को भर रहे हैं। अब संगम युग में जो बाबा आते हैं तो सबसे बड़ी प्राप्ति है ज्ञान अर्थात समझ। युग परिवर्तन का आधार क्या है? ज्ञान। सबसे पहले क्या करने को कहते किसी को? कोई कहते हमें तो बहुत अशांति है, मन नहीं लगता है, कोई कहते डिप्रेशन है, कोई कहते गुस्सा बहुत आता है, वो कहते व्यसन बहुत है। सबका उपाय हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? 7 दिन का कोर्स करो। सबका जवाब क्या है? सर्व समस्याओं का समाधान क्या है? भाई पहले तुम 7 दिन का कोर्स करो। 7 दिन का कोर्स अर्थात ज्ञान। ज्ञान मन का समाधान, मन का समाधान अर्थात किसी भी व्यक्ति के जीवन की सर्व समस्याओं का समाधान क्या है? ज्ञान। अनेक प्रकार की मुश्किलात, अनेक प्रकार के क्वेश्चंस जीवन के अंदर, अनेक प्रकार की समस्याएं हर व्यक्ति के जीवन में आती रहती है और आप किसी भी समस्या के विस्तार में जाएंगे, डिटेल में जाएंगे, मूल में जाने का प्रयत्न करेंगे तो उसका कारण क्या होता है? अज्ञान अथवा बेसमझी। अज्ञान कौन सा है? मूलभूत अज्ञान ये है कि हमें ये भूल गया है अभी कि हमें जो चाहिए वो कहां से मिलेगा। हर व्यक्ति को क्या चाहिए? सुख और शांति। सबको क्या चाहिए? सबको, कोई भी व्यक्ति होगा जीवन में एक ही आश रखता है कि मेरे जीवन में सुख होना चाहिए। सुख की महसूसता लोगों को पसंद आती है, परंतु कहां से मिलेगा वो पता नहीं है, दौड़ते रहते हैं। कलयुग अंत में अब ये मान्यता बन गई कि भाई शायद भौतिक उपलब्धि से ही, भौतिक सुख सुविधा से ही सुख मिलेगा, और उस सब के लिए क्या चाहिए, धन चाहिए। इसलिए आज व्यक्ति धन के पीछे पड़ा है, बस उनको लगता है कैसे भी करके धन इकट्ठा कर ले तो शायद सुख मिलेगा, परंतु आज सबका अनुभव है कि उससे सुख नहीं मिलता। सुख क्या है, शांति क्या है, वो बिल्कुल भूल गया है लोगों को। शांति क्या है वो बिल्कुल अनुभव ही नहीं है। कई बार कई लोग आते हैं सेंटर पर अपने देखने के लिए, सेंटर में आएंगे, क्लासरूम देखेंगे, म्यूजियम देखेंगे, इसको शांति कहते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, पर इसको ही शांति कहा जाता है क्या, पूछेंगे। बहुत अच्छा अनुभव होता है कि ऐसा कभी हमने पहले लाइफ में अनुभव ही नहीं किया, इतना शांति का अनुभव ही नहीं किया, तो भूल गए हैं सुख शांति के अनुभव की, अनुभव को ही भूल गए। एक छोटी सी कहानी जैसा है, एक बार ऐसे हुआ कि एक व्यक्ति गरीब था बहुत, इसलिए धन ना होने कारण बहुत दुखी था। उसने भगवान की स्तुति किया, तपस्या किया, भक्ति किया और भगवान उस पर प्रसन्न हो गए। कहा भी क्या मुसीबत है, भगवान को बोला मैं बहुत गरीब हूं। भगवान ने कहा ठीक है, तुम फलाने 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 जगह पर जाकर के इस व्यक्ति से मिलना, वो तुम्हारा दुख दूर करेगा। तो ठीक है, वो जाता है, जहां जाता है वहां एक संत तपस्या करते बैठा था, तो वहां जाके बैठा। फिर जैसे उन्होंने आंख खोली तो पूछा क्या है भाई, कहता है कि मैं मेरी ये समस्या लेके आया हूं, मैं बहुत गरीब हूं तो मुझे मदद कीजिए। संत कहता है तू गलत जगह आया है भाई, मेरे पास ये कुछ नहीं है, मैं तो साधु हूं, मेरे पास धन कहां से आएगा, तू मेरे पास आया क्यों, ये तो गलत बात है। कहते नहीं, मुझे भगवान ने बोला है, मुझे साक्षात्कार हुआ, भगवान ने बोला स्पष्ट आपका बताया कि इनके पास जाओ तेरे को धन मिलेगा। सोचता है भगवान ने कैसे कह दिया, मेरा नाम ले लिया। फिर उसने कुछ सोचा, कहते हाँ एक बात याद आई है, देखो क्या है कि कुछ दिनों पहले मुझे पारस मणि मिला था कहां से, पर मेरे तो काम का था नहीं, तो मैंने तो फेंक दिया था, पर मुझे ध्यान आता है कि मैंने इस दिशा में फेंका है, तुम जाओ तुम्हारी तकदीर होंगी अगर तो तेरे को मिल जाएगा। वो गया और बाय चांस उसको मिल भी गया, तो पारस मणि मिला तो उसने देखा भी, उसने लोहे के कड़े पहने थे हाथ में, उसको लगा के देखा वो सोना बन गया, बहुत खुश हो गया, बहुत खुश हो गया। तो इसलिए फिर वो संत को धन्यवाद देने के लिए गया, उसके पास गया, तो फिर वो संत तो ध्यान में बैठा था, काफी समय तक ध्यान में बैठा हुआ था, वो बैठा रहा उसके सामने और उसका चेहरा देखता रहा। जब उसने आंखें खोली तो कहा अभी फिर क्यों आया है, तेरे को मिल गया ना पारस मणि, कहता हाँ मिल गया तो फिर जाओ तेरा काम तो हो गया ना। बोला नहीं, तो बोला और क्या चाहिए, कहते हैं मुझे वो चाहिए जो आपको मिल रहा है, आपको ऐसा क्या मिला जो आपके चेहरे पर इतना खुशी आनंद दिख रहा है, और पारस मणि जैसी चीज को आपने फेंक दिया तो आपको जरूर मेरे से कुछ ज्यादा मिला है, वो मुझे चाहिए जो आपको मिला है। तो वो क्या था, आत्मा को अतीन्द्रिय सुख, ध्यान का, तपस्या का, स्मृति का सुख, जो किसी भी भौतिक सुख से ज्यादा है। लोगों ने संसार में क्या फैला दिया है कि अगर आध्यात्म का, आध्यात्म में जाना है, भगवान की प्राप्ति करनी, तो घर बार छोड़ के जंगल में जाना पड़ेगा, है ना। परंतु जंगल में जाने से भी किसी को शांति कभी भी मिली नहीं है, बाबा ने ही आके ये ज्ञान दिया, इम्पोर्टेंट क्या, कि तुम गृहस्थ में रहते हुए अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति कर सकते हो। ज्ञान क्या दिया, पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। क्या ज्ञान दिया, पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। तुम गृहस्थ में रहते हुए पवित्र बनो, किसी को पता नहीं था, कोई ये सोच नहीं सकता कि कोई गृहस्थ में रहते हुए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे, शुद्ध अन्न का धारणा का पालन करे, ये कोई बुद्धि में सोच भी नहीं सकता। देखते हैं तो भी उनको लगता है तो असंभव जैसी बात है, ऐसा कैसे हो सकता है। पर यही सही ज्ञान है, क्या है, यही सही ज्ञान है जो बाबा ने आकर के हम सबको दिया है। अभी दो चार दिन पहले मुरली में बाबा ने कहा, बिना पवित्रता के सतयुग की स्थापना नहीं हो सकती। क्या कहा, बिना पवित्रता के सतयुग की स्थापना नहीं हो सकती। इसलिए सबसे ज्यादा हमारा सहयोग अगर बाबा को है तो कौन सा है, पवित्र बनना। हाँ, बाबा के यज्ञ के लिए सब कुछ आवश्यक है, तन मान धन समय संकल्प शक्ति सब कुछ आवश्यक है, परंतु सबसे ज्यादा पवित्रता, उसका बेस पवित्रता है। कोई सोचे कि हम धन से बहुत सहयोग करें और सतयुग आ जाएगा, नहीं। कोई भागदौड़ बहुत करे, तन से बहुत मेहनत करे और सोचे कि हम बाबा के यज्ञ के बहुत सहयोगी है, नहीं। सहयोगी वही बन सकता है जो पवित्र बनता है। बाबा ने फिर कहा, पवित्र अर्थात कोई खाली ब्रह्मचारी नहीं, वो तो मूलभूत पहला क्या है, वो ब्राह्मण बनने का एंट्री पास है, ब्रह्मा कुमार अथवा ब्रह्मा कुमारी कहलाने के लिए, अपने आप को मुख वंशावली ब्राह्मण कहलाने के लिए सबसे पहली आवश्यकता क्या है, पवित्रता, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, वो तो एंट्री है, एंट्री पास है। पर सहज संभव इसलिए है, सहज संभव इसलिए है कि ये काम बाबा का है। क्या कहते बाबा, कि मैं तुमको क्या बनाता हूं, शूद्र से ब्राह्मण। जिन आत्माओं को निश्चय हो जाता है बाबा में, बाबा को पहचान लेते हैं, उनको धारणा करने में कोई मुसीबत होती नहीं है, सब सहज धारणा करते हैं। क्या समझते सभी, सहज धारणा हुई, जिनकी सहज धारणा हो गई हाथ ऊपर करें, है ना, क्योंकि बाबा कहते हैं शूद्र से ब्राह्मण मैं बनाता हूं। और फिर कौन सा स्टेप आता है, फिर बच्चों को क्या करना है, ब्राह्मण से फरिश्ता आपको बनना है। शूद्र से ब्राह्मण बाबा बनाते हैं, ब्राह्मण से फरिश्ता आपको बनना है, फिर फरिश्ते से देव तो अपने आप बन जाएंगे। फरिश्ता बनने के बाद भी मेहनत नहीं है, है ना, जो फरिश्ता बनेगा वो देवता बन जाएगा। और शूद्र से ब्राह्मण बनाने की जवाबदारी किसने ली है, बाबा ने ली है ना। अब हमारा काम क्या है, खाली ब्राह्मण से फरिश्ता बनना। संगम युग में हमारा इतना ही काम है, बड़ा है कि छोटा है, क्या कहेंगे, ये काम बड़ा है कि छोटा है। बाबा तो सहज भाव से कहते हैं कि बस तुमको करना क्या है, और खास तो कुछ करना नहीं, ब्राह्मण से फरिश्ता बन जाना है बस। तो एक धारणा है पवित्रता, काम विकार पर विजय, और उसके बाद पूरा लश्कर है क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मैपन, मेरापन, आलस, ईर्ष्या, द्वेष, पूरी पूरी पलटन है ना, पूरा लश्कर है। और इसीलिए क्या होता है, फिर युद्ध चलता है, युद्ध चलता है। तो लोगों ने क्या कर दिया, इवन इतना सर्वशास्त्रमय शिरोमणि गीता कहते हैं, है ना, गीता का ज्ञान कहते हैं, मैं कहती हूं कि ऐसा कैसा ज्ञान है, क्योंकि संगम युग में स्वयं भगवान ने आकर के जो ज्ञान दिया वो ज्ञान का थोड़ा थोड़ा सार, कोई कोई बात बाबा कहते हैं गीता में लिखी हुई है, कुछ कुछ बातें, थोड़ी बहुत दो चार बात, पर मूल बात तो यह है कि ज्ञान दिया कब, युद्ध करने के लिए दोनों तरफ सेनाएं खड़ी थी और उस समय ही ज्ञान दिया, उस समय ज्ञान दिया। और ज्ञान भी कैसे दिया, क्या कहते हैं, युद्ध में तो गए, सब कुछ हुआ, पर अगर अर्जुन को डिप्रेशन नहीं आता था तो ज्ञान मिलता था उनको क्या, नहीं मिलता था। मिला इसलिए कि अर्जुन ने अपने हथियार नीचे रख दिए, पसीना पसीना हो गया, ये सब डिप्रेशन की साइंस है, निशानी है। उस समय डिप्रेशन शब्द नहीं था, पर अभी जो अर्जुन को हुआ वो वर्णन है शास्त्र में, गात्र ढीले हो गए, उसने धनुष बाण नीचे रख दिया, पसीना पसीना हो गया, ये सब डिप्रेशन की साइंस है, निशानियां है। और उसने कहा कि जिन्होंने देखा अपने आजू बाजू भी डिप्रेशन का केस, वो पहले थोड़ा मन का कारण होता है, उसके बाद थोड़ा बढ़ जाता है डिप्रेशन, तो वो कोई काम नहीं कर सकता, भाई होगा तो ऑफिस में काम नहीं कर सकता, बहन होगी तो रोटी तक नहीं बना सकती, आटा नहीं गूंथ सकती, इतने तक वो कार्य नहीं कर सकती। तो वही हुआ, उसने कहा मैं युद्ध करूंगा नहीं, बस तब भगवान ने ज्ञान देना शुरू किया। गीता का ज्ञान अर्थात क्वेश्चन आंसर सेशन, भगवान समझाता जाता है, अर्जुन समझता नहीं है, बार बार अलग अलग प्रश्न पूछता जाता है, उसका जवाब देते जाते हैं, उसका शास्त्र बन गया। ज्ञान इसको नहीं कहते हैं। हम स्कूल में भी जाते हैं तो पहले पढ़ाया जाता है, बाद में पूरे साल पढ़ाया जाता है, फिर जब एग्जाम नजदीक आएंगी तो कहेंगे क्वेश्चन आंसर करो, है ना, परीक्षा आती है नजदीक तो कहते क्वेश्चन आंसर सॉल्व करो, पहले क्या क्या पेपर लिए थे उसका क्वेश्चन सॉल्व करो तो इजी होगा, पर पहले पढ़ाई। जिसको सर्वशास्त्र में शिरोमणि कहा उसमें भी पहले पढ़ाई नहीं है, ज्ञान उसको कहा जाता है बाबा ने हमें पहले ही आकर के पढ़ाई पढ़ाना शुरू कर दिया। जब किसी के जीवन में मुसीबत आती है तब पढ़े ऐसा नहीं, अभी किसी ने प्रश्न पूछा था, जब हम यूजुअली प्रवचन करते हैं किसी को ज्ञान देते हैं तो कहते हैं ना भाई तुम्हारे जीवन में अगर अशांति है दुख है तो राजयोग तुम्हें बहुत मदद कर सकता है, किसी यूथ होंगे यंगस्टर्स होंगे तो बोलेंगे तुम्हारे अगर एकाग्रता की शक्ति कम है तो राजयोग मदद कर सकता है। तो एक भाई ने उठ के प्रश्न पूछा कि अच्छा किसी में एकाग्रता नहीं है तो राजयोग चाहिए, शांति नहीं है तो राजयोग चाहिए, सुख नहीं है तो राजयोग चाहिए, कि तो मेरे पास सब कुछ है मेरे को राजयोग क्यों चाहिए, है ना, कि तो मुझे अशांति भी नहीं है, मेरी कॉन्सेंट्रेशन पावर भी बहुत अच्छी है, मुझे सुख भी हर प्रकार का, मैं क्यों राजयोग करूं। तो कहा कि देखो तुम्हारा बहुत अच्छे से अच्छा मोबाइल हो, सब काम करता हो, तो भी क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, चार्ज करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है, करना पड़ता है। तो राजयोग का अभ्यास मन को चार्ज कर देता है। सब कुछ पता होते हुए भी, सब शक्तियां होते हुए भी, कार्य करते 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 हमारी शक्तियां यूज होती है, इसीलिए उसको चार्ज करना, रिचार्ज करना बहुत आवश्यक होता है। तो बाबा ने हमें बिना पूछे बिना कहे है ना ज्ञान देना शुरू किया। और बाबा की व्यवस्था देखो कितनी वंडरफुल है, जो विश्व में किसी ने कभी नहीं की, कि बाबा ने कहा कि ये मेरी क्या है, स्कूल है, पाठशाला है, ये खाली सत्संग नहीं है। भाई बाबा ने बड़ी अच्छी पॉइंट सुनाई थी मुरली में, कहता है कि ये सत्संग नहीं है, क्या है, पाठशाला है, यहां पढ़ाई होती है। भक्ति में सत्संग में क्या कहते थे, दो शब्द भी कान में पड़ गए ना तो ठीक है, बाबा कहते नहीं दो शब्द से कुछ नहीं बनता है ना, तुम्हें अच्छी तरह बाबा के ज्ञान की हर पॉइंट को, हर बात को समझना होगा। और समझने के बाद भी ज्ञान को जानते हैं, समझते हैं, तो भी क्या होता है, तो भी धारणा नहीं होती है, तो भी धारणा होने में समय लग जाता है। इसीलिए बाबा ने स्कूल खोला, गीता पाठशाला खोली, जहां पर क्या होता है, क्या होता है, रोज मुरली पढ़ी जाती है, रोज मुरली पढ़ी जाती है। तो ब्राह्मण किसको कहते हैं, ब्राह्मण बनना अर्थात क्या, रोज मुरली सुनना, रोज मुरली क्लास करना। आप में से कौन कौन रोज मुरली क्लास करते हैं, हाथ ऊपर करें, बहुत अच्छी बात है। क्यों करने की जरूरत है पता है, क्योंकि बाबा जो ज्ञान दे रहे हैं वो ज्ञान, शब्दों, शब्द का ज्ञान कुछ शास्त्रों में लिखा हुआ है। आत्मा के लिए कहते हैं कि भ्रुकुटि के बीच में चमकता है जब सितारा, कह तो दिया, परमात्मा को भी कह दिया, पांच तत्वों से पार रहने वाला, एक कल्प वृक्ष का बीज स्वरूप है, उद्भव मूलम अधर शाखा, कहां है शास्त्रों में, खाली लिखा है शब्द, पढ़ने वालों ने पढ़ा, दूसरों को सुनाया, परंतु मन में बैठा नहीं, जीवन में उतार नहीं सके। कामेशु क्रोधेशु विजयी भव, तो लिखा है ना गीता में, बीच में बाबा ने बड़ी अच्छी बात बताई थी, चलो गीता में कृष्ण का नाम लिख दिया कोई बात नहीं, कृष्ण भी तो सर्वगुण संपन्न है, चलो समझ लो उसने कहा, कामेशु क्रोधेशु विजयी भव, उनकी तो मानो, कोई मानता है, नहीं मानता है, खाली पढ़ते हैं। तो पढ़ना एक बात है, ज्ञान सुनना एक बात है, और धारण हो जाना दूसरी बात है। तो बाबा भी जो ज्ञान सुनाते हैं, हाँ बेसिकली हम पवित्र बन गए, ब्राह्मण बन गए, ब्रह्मा मुखवंशावली, ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए, रोज क्लास में आते हैं, बाबा ने कहा इतना ही पर्याप्त नहीं है, इतना ही पर्याप्त नहीं है। यहां तक बाबा ने बोल दिया कि कोई समर्पण भी है, अगर समर्पित हो गया है तो भी उनको पुरुषार्थ रोज करना पड़ेगा। कोई ये समझ ले कि मैं तो बाबा का बन गया बस, नहीं, उसको भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो आत्मा को धारण होने में समय लगता है, और उसकी विधि बाबा ने ये बताई, जितना जितना रोज 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 मुरली पढ़ते हैं, सुनते हैं, मुरली क्लास रोज करते हैं, और रोज करने के कारण मन बुद्धि पर उसका असर धीरे 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 होता जाता है। ये इतना डिफिकल्ट समझ लीजिए, जैसे एक कहावत है, हम कहते भाई किसी के पर असर नहीं होता है कोई बात का जल्दी से, तो हम क्या कहते हैं, भाई ये तो पत्थर पर पानी है, क्या कहते हैं, ये तो पत्थर पर पानी, अर्थात क्या होता है भाई, पानी गिराते हैं तो भी पत्थर पर उसका असर कोई नहीं होता है, परंतु वही पत्थर पर कांस्टेंट सतत पानी पड़ता रहता है रोज 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 लंबे समय के लिए, तो क्या होगा, वो पत्थर पर निशान हो जाएगा, है ना, पत्थर पर निशान हो जाएगा। आप सोचिए कब, लंबे समय के बाद। समुद्र किनारे आप देखते हैं कि कोई टेढ़े मेढ़े पत्थर होते हैं शुरू में, फिर वो क्या होता है, सागर में सागर के पानी की थपाट लग 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 करके फिर वो गोल शिवलिंग जैसा बन जाता है, स्मूथ बन जाता है। तो रोज मुरली सुनने की ये विशेषता है, क्या है, रोज मुरली सुनते जाएंगे तो डिफिकल्ट डिफिकल्ट नहीं होने वाली धारणा भी धारण हो जाएगी, है ना। सहज भाव से अगर हमने ध्यान से एकाग्रता से प्यार से बाबा को ही सामने देख करके रोज मुरली सुन रहे हैं, सहज भाव से आत्मा का परिवर्तन होता जाता है। रोज मुरली सुनने वाले को वो आनंद भी आता होगा और पता भी चलता होगा कि बाबा कितना भिन्न भिन्न प्रकार से ज्ञान देते हैं और हरेक के जीवन से लगता है। आपको लगता है कि मेरी बात ही बाबा बता रहे हैं, ऐसा लगता है ना। अभी कुछ दिन पहले ही एक बात हुई क्लास में कि हम क्लास में बाबा की मुरली पढ़ रहे थे, तो बाबा जैसे कहते हैं कि भाई तुमको अपने मन को खराब नहीं करना है कभी, बस संगम युग में अभी क्या सीख जाना है, मन को मौज में रखना सीख लेना है। बाकी हमारा स्वभाव तो ऐसा है कलयुग अंत में ऐसा बन गया है कि हम बहुत छोटी छोटी बातों से मन को बिगाड़ लेते हैं। मन को अच्छा करने में तो टाइम लगता है ना, और बिगाड़ने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। जहर का एक बूंद काफी होता है ना, कितना भी बड़ा पतीला भर के दूध हो है तो क्या है, एक एक ड्रॉप ही एक बूंद ही जहर गिरा है तो क्या हो जाएगा। बाकी तर्क तो ये कहता है, आर्ग्यूमेंट तो ये कहता है कि एक बूंद जहर का क्या कर सकता है, पतीला भर के दूध है तो वो जहर को दूध बना लेवे ना, परंतु होता है ऐसा, कभी हो ही नहीं सकता है। हम मन बिगाड़ लेते, तो मैंने क्लास में एक एग्जांपल देके कह दिया कि देखो कभी कभी ये भी हो सकता है कि किसी की बर्थडे है और किसी ने हैप्पी बर्थडे नहीं कहा ना, तो भी मूड खराब हो जाएगा। किसी ने हैप्पी बर्थडे नहीं बोला तो भी मन खराब होगा। बाकी क्या है, किसी ने बोला नहीं बोला क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ा किसी ने मुझे हैप्पी बोला या नहीं बोला। मुझे हैप्पी किससे रहना है, अपने आप से और बाबा की याद से। तो दूसरे दिन एक माता ही बोला, कल आपने मेरे लिए ही कहा, क्या हुआ, कहते कल ही क्या था, जिस दिन मूली चली ना उसी दिन, कहती है क्या हुआ कि मेरा पति किसी से बात कर रहा था फोन पर, उसके बहन से, पति की बहन से बात कर रहा था और उस दिन उसका बर्थडे होगा तो उसने फोन पे बोला हैप्पी बर्थडे। तो कहती है मेरे को हुआ कि मेरे को कभी हैप्पी बर्थडे बोला ही नहीं, लाइफ में इतनी मेरी बर्थडे चली गई तो मेरे को तो कभी हैप्पी बर्थडे बोला ही नहीं। तो कहता मेरे मूड इतना खराब हो गया था, बात मत पूछो, सुबह सुबह ही क्लास में आने के पहले, फिर जैसे क्लास में आई थी पॉइंट चला, कहते कमाल है बाबा का मेरी तरफ कितना ध्यान है ना। उसी दिन बोल दिया और अपनी स्थिति को सुधार दिया। तो जो बात हमारे जीवन में आने वाली है उसका जवाब भी मुरली के अंदर नक्की होता है। तो तीसरी प्राप्ति हमें ज्ञान। चौथी जो प्राप्ति है बहुत वंडरफुल है और वो है योग। योग की बातें सभी बहुत करते हैं। एक तो योग शब्द आजकल दुनिया में, योग आप बोलेंगे तो वो क्या समझते हैं, हठ योग। योग क्या है उसकी सही समझ बाबा ने आके हमें दी है, और न केवल समझ दी है परंतु विधि बताई, विधि बताई। क्या है योग, योग कुछ नहीं है, बाबा ने कहा क्या है योग, योग अर्थात मन मनाभव और कुछ नहीं, योग अर्थात मन मनाभव बस, तुम्हारा मन मेरे को दे दो। पर कैसे देंगे भाई, मन तो व्यक्ति तब दे सकता है ना जब उनके अपने पास हो। क्या कहते कलयुग में मन कैसा हो गया है, कहते हैं मन को कहते तूफानी घोड़े के समान। कैसा हो गया है, तूफानी घोड़े के समान, भटकने की आदत वाला, जरा भी शांति से कहां पर भी बैठेगा नहीं। दिन में कितने विचार और क्या क्या विचार आ जाएंगे आप सोच नहीं सकते। और ऐसे भटकते हुए मन को कैसे समेटना वो भगवान ने आके सुनाया। ये बहुत वंडरफुल ज्ञान है, बहुत वंडरफुल। कैसे मन को समेटो उसके लिए ज्ञान दिया, समझ दिया उसके लिए। समझो हमारा सबसे ज्यादा ध्यान जैसे कहा देह के संबंधों की तरफ जाता है, चाचा मामा गुरु गोसाई भाई बहन माँ बाप दादे दादियां जो भी है बहुत है ना। जो अर्जुन का प्रश्न था कि भाई ये इतने लोग मेरे सामने, मैं उनके सामने युद्ध कैसे करूं, तो बाबा ने हमें उसके लिए समझा दिया भाई तुम कौन हो, तुम आत्मा हो। पहले ज्ञान दे दिया तुम आत्मा हो और ये दुनिया मरी पड़ी है ना। क्या कहा, ये दुनिया मरी पड़ी है। ये जो ज्ञान दुनिया वाले ऐसे ही कहते हैं वो बाबा ने हमें समझा दिया कि भाई अभी वक्त कौन सा आ गया है, कौन सा, वापस घर जाने का। इस समय पूरा हो रहा है, कल्प पूरा हो रहा है। बाबा कहते मैं किस लिए आया हूं, तुम बच्चों को वापस ले जाने के लिए आया हूं। तो बाबा कहते हैं कि देह सहित देह के सर्व संबंध को क्या कहा, भूलो। दुनिया वालों ने क्या समझ लिया, छोड़ो, तो उनको बहुत मुश्किल लगा। परंतु बाबा ने क्या कहा, छोड़ने की बात नहीं है, खाली क्या करो, भूलो और मुझे याद करो। भूलो अर्थात क्या, भूलो अर्थात क्या है, नाम थोड़ी भूल जाएंगे, नहीं भूलेंगे, संबंध भूलेंगे क्या, नहीं भूलेंगे। जो चाचा है वो तो है ही बेचारा, है ना, पति है तो है ही, पत्नी है तो है ही, वो तो नहीं भूलेंगे। वो भूलने का अर्थ क्या है, किसी के कारण मन को खराब मत करो। क्या, किसी भी संबंध के कारण अपने मन को खराब नहीं करो। इसने बुलाया क्यों नहीं बुलाया, कुछ दिया क्यों कुछ नहीं दिया, इन बातों से, संबंधों से जो मन बिगड़ता है, तो ऐसा भूल जाओ बाबा कहते हैं। और उसके लिए फिर ज्ञान दिया, क्या ज्ञान दिया, आप अगर मूल्य को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे तो हर धारणा के लिए बाबा ने बहुत सारी पॉइंट्स दी है। उसमें से एक, फॉर एग्जाम्पल, बाबा ने कहा तुम पूर्वज आत्मा हो। क्या कहा, तुम पूर्वज आत्मा हो। अच्छा, पूर्वज होता है वो क्या करता है, पूर्वज अर्थात दादा पर दादा पर दादा पर दादा। तो दादा ही कहो ना, दादा क्या करता है घर में, दादा क्या करेगा, दादा किस बात के लिए नोन है हमारे परिवारों में, देने के लिए। दादा किस लिए होता है, वो देता ही हमेशा। दादा इतना बड़ा होता है कि छोटे बच्चों से मांगने का तो कोई सवाल ही नहीं है, है ना। वो प्यार देगा, मांगेगा कभी, बच्चे 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 करता रहेगा, बच्चे सामने देखे या न देखे तो भी प्यार करता रहेगा। तो बाबा ने क्या, एक पॉइंट, एक ही पॉइंट है, ऐसे बहुत पॉइंट बाबा ने दिया है, एक ही पॉइंट है, तुम पूर्वज आत्मा हो, तुम जहां हो वहां, जो ज्ञान में आता है वो पूर्वज आत्मा है। परिवार तो बड़ा होता है, कभी कभी क्या होता है कि परिवार बड़ा है और ज्ञान में चलने वाली बहन छोटी, कभी कभी समझो कुमारी चलती है ज्ञान में, सबसे पहले कुमारी चलती है, तो वो कुमारी पूर्वज हुई, समझा। जो ज्ञान में बहन चलती है समझो, छोटी है उम्र में, छोटी है परिवार है गृहस्थ है, पर वो ज्ञान में चली है इसलिए वो क्या है, पूर्वज है। पूर्वज की जिम्मेदारी क्या है, देना। पूर्वज मीन्स देना, आप दो, किसी से भी लेने की अपेक्षा नहीं रखो। अगर आप लेने की अपेक्षा नहीं रखेंगे तो मन दुखी नहीं होगा। बाबा ने विधि बताई, वहां से मन को समेटो, वहां से अगर आपने लेना बंद कर दिया अर्थात क्या हुआ, हिसाब किताब, हिसाब किताब चुक दो। हिसाब किताब में दो बातें होती है, क्या होती है, एक लेना और एक देना, उसे हिसाब किताब बनता है ना। हिसाब किताब में चाहे तो आपको देना होता है अथवा आपको किसी से लेना होता है, तो देना है वो दे दो, क्या करना है, देना है वो दे दो। उससे जो भी आपका वस्तु या धन के प्रति जो अटैचमेंट होगा ना, मेरा मेरा मेरा, वो छोड़ना पड़ेगा। एक अनुभव की बात सुनाती हूं देने के लिए। तो एक बहन बाबा के ज्ञान में सालों से, बहुत सालों से चलने वाली बहन थी, तो आई हमारे पास, कहती है कि मेरे को बहुत मुसीबतें चल रही, समस्याएं बहुत है मेरे पास अभी। वो उसको कुछ फ्रैक्चर हो गया, हॉस्पिटलाइज हो गई, अथवा और घर वाले सब बीमार होने लगे, दूसरा बेटा बीमार होने लगा, बहुत मुसीबतें चलती है, कहती है। तो बात करते करते मुझे कहती है, आपको पता है मुझे मुसीबत का कारण क्या है। मैंने बोला मेरे को कैसे बता, बताओ। कहते हैं मेरी सास है ना, वही मेरी मुसीबत का कारण है। अच्छा, मैंने कहा सास कहाँ रहती है, मर चुकी है। क्या है, क्या बोला, मर चुकी है, तो मरी हुई कैसे देंगी, समस्या पैदा करेगी। तो मैंने बोला ऐसा तो नहीं हो सकता, बेचारी मर गई इतने सालों से, अब क्या है। तो कहते नहीं, पर उसकी एक बात है। क्या बात है भाई, कहते क्या है कि वो जब मर गई ना, तो उसके सामने मैं अकेली थी, तो उसने मुझे सोने की दो चूड़ियां दी और बोला था एक तू रखना और एक मेरी बेटी को देना। कहते मैंने बेटी को नहीं दिया है, समझा। तो इसीलिए मेरी सास रोज मुझे सपन में आके बोलती है, इसको दे दो, इसको दे दो, इसको दे दो। जब तक नहीं दिया है तब तक शांति नहीं है। मैंने कहा तो दे दो, ये तो इजी बात है ना, हिसाब किताब पूरा करो, जो मांगता है उसको दे दो। ये कहना आसान है परंतु करना आसान नहीं। देखो ये आंतरिक संघर्ष, मन में जो संघर्ष होता है ना, वो इस प्रकार से होता है। हम देना नहीं चाहते हैं, और जब तक आप देंगे नहीं तब तक हिसाब किताब चुक तो होगा नहीं। इसीलिए फिराक दिल बन करके, समझदार बन करके, जो मांगता है उसको देके पूरा करो। लंबा नहीं चलाओ, अगर वो आपके हाथ में है तो उसको लंबा नहीं चलाओ, दे दो, दे के पूरा करो। अच्छा, अब लेने का बात, लेने का कैसे पूरा करेंगे, देना तो हमारे हाथ में है ना, पर लेना, लेना तो हमारे हाथ में नहीं है, तो क्या करो, उसको मन से हिसाब पूरा करो। जैसे व्यापारी लोग क्या करते हैं, वर्ष के अंत में कुछ कुछ तो बच ही जाता है ना, भाइयों को पता होगा ज्यादा, कि वर्ष के अंत में जब हिसाब चुक तो करते हैं तो लेने का बाकी होता है 2-4 लाख रुपया, वो मांडवाड़ कहते हैं उसको, उसको पूरा करो, अभी ये मिलने वाला नहीं है, छोड़ दिया, मन से क्या किया, छोड़ दिया। तो अपने को भी क्या करना है, मन से छोड़ देना है। संगम युग में बाबा की श्रीमत तो ये है कि तुम किसी से भी धन की लेन देन नहीं करो, बहुत करके, तो ऐसा कहना अच्छा नहीं लगता, पर बहुत करके कितना भी आपको लगे कि देने जैसा है तो भी नहीं दो। टाइम हो गया, एक लास्ट में रमेश भाई का अनुभव सुनाती हूँ। हमारे रमेश भाई जी बड़े भाई जी थे, उन्होंने वो बड़ा अपना अनुभव सुनाते ये बात पर, है ना। बाबा ने कहा था धन की लेन देन ब्राह्मण परिवार के साथ मत करो। तो भाई जी सुनाते थे कि शुरू शुरू की बात है कि हम जब बॉम्बे में रहते थे तो एक भाई प्रेस करने वाला भाई था, तो उसको बहुत आवश्यकता थी पैसे की। तो उस समय तो 1000 रुपया भी बहुत ज्यादा था, 1000 रुपया मांग रहा था। तो देखो श्रीमत पर चलने की बात, रमेश भाई कहते मैंने बाबा से फोन किया कि बाबा ये व्यक्ति 1000 रुपया मांगता है, दे दूं? तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे, तुम नहीं दो नहीं तो तेरा तो धन जाएगा पर मेरा तो बच्चा भी जाएगा। तो फिर रमेश भाई कहते कि मेरे को लगा कि बाबा खाम खा 1000 रुपया क्या चीज है, कुछ भी नहीं है, तो क्या जाता है देने में। तो रमेश भाई कहते बाबा ने ना बोला तो भी मैंने दे दिया 1000 रुपया कि छोड़ो 1000 रुपये की बात में क्या होता है, दे दिया। तो कहते हैं शुरू में तो मुझे वो कहता मैं 100-100 रुपया करके तुमको वापस दे दूंगा। तो कहता है पहले महीने में तो 100 रुपया दिया, फिर दूसरे महीने में थोड़ा लेट 100 रुपया दिया, और फिर क्लास में आना बंद कर दिया, चला गया ज्ञान से, है ना। तो फिर समाचार दिया रमेश भाई ने बाबा को, बाबा के मैंने कहा था ना तेरा तो धन गया पर मेरा तो बच्चा गया, समझा। तो कई बार बाबा की बातें हमें समझ में नहीं आती है, परंतु ये भी हिसाब किताब की बात है, लेन देन की बात। अभी लेन देन हमें बनाना नहीं है, बस जो बना हुआ है उसको हिसाब किताब चुकतू करना है, तो आपका मन फ्री होगा और तो वो मन आप बाबा में लगा सकेंगे। तो बाबा हमें विधि बताते हैं मन मनाभाव की। तो आप अभी रोज जब मुरली सुनो तो क्या करना है, मुरली में से जो बाबा की पॉइंट है जो हमें ये मूल पॉइंट में मदद करती है, मूल पॉइंट क्या है हमारी सार, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सब भूल करके मुझे याद करो। रोज बाबा क्या कहता है, बाकी सब बातों को देह सहित देह के सर्व संबंध को भूल करके मुझे याद करो, ये मेन पॉइंट है ना। अब ये मेन पॉइंट में अपने मन को स्थिर करने के लिए बाबा जो जो छोटी छोटी बातें बताते हैं, पदार्थों से वस्तु से मन को समेटने का जो सिखाते हैं, वो ध्यान रखना है और उसके पर मेहनत करनी। तो इसलिए बाबा ने कहा ज्ञान खाली सुन लेना तो सहज है, परंतु बाबा के मंजिल थोड़ी लंबी है, इसलिए मेहनत तो जरूर करना ही है, तभी हम बाबा जो चाहते हैं हमारे से। अभी मन जितना बाबा में लगाते जाएंगे तो हल्के होते जाएंगे, है ना। भक्ति में कहते सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, कहा ना गीत जो बहुत अच्छा है, पर सब सौंप कैसे देंगे, मैं और मेरापन जाएगा तो सौंपेंगे ना। भगवान करने को तैयार है पर हम उनको देने को तैयार नहीं है, तो कैसे हल्के होंगे। तो अभी संगम युग में हमें क्या करना है, पुरुषार्थ खाली ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है। ब्राह्मण तो बन गए, बाबा के बन गए, अब बाबा को सब कुछ सौंप देना है, मैं और मेरेपन को मिटा देना है, तो फरिश्ते बनेंगे। और एक बार अगर फरिश्ते बन गए तो स्टैंप लग गया, आप देवता बन ही जाएंगे, समझा। ओम शांति।
Thank you. जगती।